अखिल, इतने पास क्यों आ गए तुम? रैना ने उसकी सांसों को अपने गालों पर महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा। अखिल उसके बिल्कुल सामने था। दोनों अब बिस्तर पर ही बैठे थे। रैना तकियों से टिककर आधी लेटी हुई थी और अखिल उसके बाजू में इस तरह झुका कि उसका सीना रैना की बाहों से छू रहा था। अखिल का एक हाथ रैना की कमर के नीचे टिक चुका था और दूसरा हाथ उसके गाल पर ठहरा हुआ था। पास नहीं आऊंगा तो कैसे जीऊंगा रैना? अखिल की आवाज़ गहरी और कांपती हुई थी। रैना ने उसके कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हल्का सा खींचकर अपने करीब कर लिया। तो आ जाओ, लेकिन अब पीछे मत हटना। अखिल की आंखें उसकी आंखों से टकराईं और अगले ही पल उसने रैना के होठों को अपने होठों में भर लिया। शुरुआत धीमी थी, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या तुम तैयार हो? पर रैना की उंगलियां उसकी गर्दन में धंस गईं और उसने खुद को और कसकर अखिल की ओर खींच लिया। अब किस गहरा हो चुका था। अखिल का हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से ऊपर पीठ की ओर खिसकने लगा। उसकी उंगलियां रैना के बालों में उलझीं और उसका सिर पीछे की ओर हल्का सा झुक गया। रैना ने अपनी टांगें मोड़कर बिस्तर पर टिका लीं, जिससे उनका शरीर और करीब आ गया। आह, अखिल, रैना के होठों से टूटती आवाज निकली, लेकिन उसके होठ अब भी उसके होठों से जुड़े थे। अखिल ने थोड़ी देर रुककर उसके चेहरे को देखा। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? रैना की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगर बुरा लग रहा होता तो तुम्हें खुद रोक देती। बस इतना सुनते ही अखिल फिर झुकाया। इस बार उसका चुंबन और भी गहरा था, जैसे उसमें 10 सालों का अधूरा प्यार समा रहा हो। रैना ने उसका चेहरा दोनों हाथों से जकड़ लिया और खुद को पूरा उसके हवाले कर दिया। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अखिल का हाथ अब उसकी बाजू से होकर उसके हाथों तक आया और उंगलियों को अपने में बांध लिया। रैना ने उसका हाथ दबाया और उसके सीने पर सिर टिकाते हुए फिर से उसे होंठों से थाम लिया। रैना, तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है? अखिल ने किसके बीच हाँफते हुए कहा। अगर ये खतरा है तो मैं हर रोज चाहूंगी, रैना ने उसके शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा। अखिल अब उसके बिल्कुल ऊपर झुक गया था, लेकिन अपना वजन उसके शरीर पर नहीं डाला। उसकी कोहनी तकिए पर टिक चुकी थी और दूसरी हथेली अब भी रैना की कमर थामे हुए थी। रैना ने अपना सिर तकिए से पीछे टिकाया और उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे से फुसफुसाई। इतना दूर मत हटना। अखिल की उंगलियां उसके बालों में फिसलती हुई उसकी गर्दन तक आईं और उसने अपने होठों से वहां लंबा चुंबन छोड़ दिया। रैना ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने पर हाथ रख दिया। किस अब और भी तेज हो चुका था, कभी होठों पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। रैना की सांसें बिखर चुकी थीं। उसका हाथ अखिल की पीठ पर घूम रहा था, जैसे हर इंच को महसूस करना चाहती हो। तुम्हें नहीं पता रैना, मैं कितने समय से तुम्हें ऐसे ही छूना चाहता था, अखिल ने गहरी आवाज में कहा। रैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकती। फिर से दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इस बार किस लंबा खिंच गया, जैसे वक्त थम गया हो। अखिल की हथेलियां उसकी गालों से फिसलकर उसकी गर्दन और कंधों तक घूम गईं। रैना ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामे रखा और पूरी तरह किसमें डूब गई। उनके शरीरों के बीच की दूरी मिट चुकी थी। बिस्तर की हल्की चादर सरक गई थी और तकिए चारों ओर बिखर गए थे, पर दोनों को इसका एहसास तक नहीं था। अखिल, रैना ने किसके बीच में टूटती सांसों के साथ कहा। क्या हुआ? अखिल ने उसके होठों से हटते हुए पूछा। उसका माथा अब भी रैना के माथे से लगा हुआ था। रुको मत प्लीज, रैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस इतना सुनते ही अखिल ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और फिर से होठों पर किस कर दिया। इस बार ना रुकने की कोई कोशिश थी, ना पीछे हटने का डर। 10 मिनट तक सिर्फ चुंबनों की बारिश थी, कभी हल्की, कभी गहरी, कभी अधूरी, कभी पूरी। रैना ने अखिल की शर्ट को पकड़कर खींचा। उसकी उंगलियां अब उसकी गर्दन और सीने पर घूम रही थीं। अखिल का हाथ उसकी पीठ से कमर तक घूमता रहा। दोनों की सांसें इतनी तेज थीं कि एक दूसरे के कानों में गूंज रही थीं। समय बीत रहा था, पर दोनों के लिए सब कुछ ठहर चुका था। सिर्फ धड़कने थीं, सांसें थीं और एक प्यास थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार कुछ देर बाद अखिल ने धीरे से किस तोड़कर उसके माथे पर होठ रखे। रैना उसकी छाती से चिपक गई, उसकी सांसें अभी भी कांप रही थीं। अखिल, हाँ, ये रात कभी खत्म मत होने देना, अखिल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया। अब हर रात तुम्हारी होगी, हमेशा। रैना ने आंखें बंद कर ली और दोनों उसी आलिंगन में डूबे रहे। उनकी गर्म सांसों और दिलों की धड़कनों के बीच कमरे में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये कहानी अभी बाकी है।